सुभाष जी बड़बड़ाते हुए खुद को शायद विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सच नहीं है, पर उनकी लड़खड़ाती जुबान और आंखों में झिलमिलाते आंसू गवाह थे कि कहीं ना कहीं उनका मन भी इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका है और भय है उसे कि कहीं ये सब हकीकत हुई तो वो इस धोखे से टूटकर बिखर जाएंगे। सुभाष जी का बड़बड़ाना जारी था। वो दीवाने जैसे लग रहे थे जिन्हें किसी चीज का होश ही नहीं था। खुद में बड़बड़ाते हुए वो एक बार फिर व्हीलचेयर सरकाते हुए गेट की तरफ जाने लगे, पर सुयश जी ने उनके आगे खड़े होकर उनके रास्ते को रोक दिया। सुभाष जी ने उन्हें अपने सामने खड़े देखा तो आंखों की नमी पोंछते हुए बोले, भैया हमें जाने दीजिए, वो मुसीबत में है, ये सब सच नहीं है, कोई बहुत बड़ी साजिश है, हमें वहां जाकर सच्चाई को सामने लाना ही होगा, सावित्री जी को ढूंढना है हमें। सुयश जी खामोश खड़े उनकी बात सुनते रहे। अपने भाई को इस हाल में देखकर दुख तो उन्हें भी हो रहा था, पर उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो भावहीन से उन्हें देखते रहे और जैसे ही सुभाष जी चुप हुए, उन्होंने गुस्से में तेज आवाज में कहना शुरू कर दिया, कहाँ जाना चाहते हैं आप? वहां जहां अब राख के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा, क्या करेंगे आप वहां जाकर? उस दोस्त से मिलेंगे जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपको झूठे इल्जाम में फंसाकर आपको मौत के मुंह में धकेलने के बाद एक बार पलटकर देखा तक नहीं कि आप जिंदा हैं या मर गए, और ये सब उन्होंने किया आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए, ताकि आपके जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ। हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है, और उन्होंने अपने ही दोस्त की गृहस्थी उजाड़ने, उसको मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। किनकी चिंता हो रही है आपको? वो जिन्होंने आपकी पत्नी होते हुए अपनी मर्यादा लांघी और आपके ही दोस्त के साथ नाजायज संबंध बनाए, उन्हें ढूंढेंगे आप जो आपको धोखा देकर, आपके प्यार को ठुकराकर, आपके जुड़े अपने रिश्ते को तोड़कर, आपके घर और बेटे को आग के हवाले करके आपके ही दोस्त के साथ अपनी नई दुनिया बसाने चली गईं, जिनसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि यही पता कर लेतीं कि आप सच में मरे भी हैं या नहीं। आपकी मौत की खबर सुनकर ही उन्होंने खुद को आपके दोस्त को सौंप दिया। उसी औरत से मिलना चाहते हैं आप जो आपके दोस्त के साथ मिलकर आपको मरवाने की प्लानिंग कर रही थी, जिन्होंने आपके बेटे को जिंदा आग के हवाले कर दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप दोनों को अपने रास्ते से हटाकर वो आपके दोस्त के पास जा सके। और ये अब क्यों? क्योंकि वो उन्हें वो सुख दे सकता है जो उन्हें आपके साथ नहीं मिला। उन दोनों की वजह से आज आप इस हाल में हैं। उन्होंने तो आपको जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए इतने भयानक एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद भी आपकी जान बच गई और शान सही सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया गया। वरना हमारा तो परिवार ही खत्म हो जाता और हम कभी जान भी नहीं पाते कि इन सबके पीछे कौन है। यही सच्चाई है जिस पर पहले हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, पर अब हमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए हम आपको और शान को यहाँ लाए हैं ताकि उन्हें आपके और शान के जिंदा होने की बात पता न चले और आप दोनों सुरक्षित रहें हमारे पास। आप माने या ना माने, पर यही हकीकत है कि पैसों के लालच में सावित्री ने आपको धोखा दिया है, और उन्होंने और अमर ने आपसे जुड़े हर रिश्ते को भुलाकर आपको मारने की कोशिश की, और अब वो दोनों साथ हैं। हम जानते हैं आप उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके लिए आप उनके रास्ते का कांटा थे जिसे उन्होंने उखाड़कर फेंक दिया है। सच्चाई तकलीफदेह जरूर है, पर उससे मुंह मोड़ लेने से वो बदल नहीं जाएगी। हमने इस दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। बेहतर होगा कि आप भी खुद को झूठे दिलासे देकर भटकाना बंद करें और सच्चाई को स्वीकार करके शान के लिए, हमारे लिए अपने बीते कल को भुलाकर यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करें। जानते हैं आपके लिए ये आसान नहीं, पर आपको हिम्मत रखकर खुद को संभालना होगा, क्योंकि आप पर शान की जिम्मेदारी है। अपने बारे में ना सही, पर उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे उसकी माँ छीन चुकी है। अब एक आप ही हैं उनके पास। सुयश जी बोल रहे थे और कुछ दूरी पर खड़ा शान स्तब्ध सा उन्हें देखे जा रहा था। उनकी कही बातें उसके छोटे से दिमाग के अंदर तक घर करती जा रही थी और उसकी सारी जिंदगी प्रभावित करने वाला था। पर अभी किसी को इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो ये सब बातें एक बच्चे के सामने बोल रहे हैं, और उस बच्चे के सामने उसकी माँ के बारे में कही वो बातें उसके नाजुक मन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती थी इसका अनुमान किसी को नहीं था। शान छोटा था, सारी बातें नहीं समझ पा रहा था, पर जो बातें समझ आईं वही काफी थीं उसके नाजुक से दिल को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, और बाकी की बातें जो उसे समझ नहीं आ रही थीं वो भी उसके दिल में गहराई में बैठती जा रही थीं, और जब उसको समझ आएगी तो वो उन बातों का मतलब जरूर समझ जाएगा, और शायद तब वो अपनी माँ से नफरत करने लगे जैसे वो आज करता था। इस नफरत की शुरुआत तभी हो गई थी, पर तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब ये नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि इस नफरत के आगे बाकी सब रिश्ते छोटे पड़ने लगे थे। शान की जिंदगी का मकसद बन गया था अमरजीत ठाकुर की बर्बादी।
सुयश जी की बातों का असर सुभाष जी पर कुछ यूं हुआ कि वो बेसुध से बैठे नम आंखों से उन्हें देखते ही रह गए। इस हकीकत का गहरा आघात हुआ था उनके दिल पर। उनके दर्द को समझते हुए ही सुयश जी ने शान का जिक्र किया था कि सुभाष जी अपने बेटे के लिए तो खुद को संभाल लेंगे, पर ये इतना आसान भी नहीं था। इतनी अच्छी चल रही थी उनकी जिंदगी, फिर अचानक एक तूफान आया और उनकी खुशियों को तबाह करके चला गया। एक हकीकत और उनसे उनका जिगरी यार और प्यार दोनों दूर हो गए। वो घर जिसे उन्होंने इतने प्यार से बसाया था, वो एक झटके में जलकर राख में तब्दील हो गया और वो आखिरी बार अपने प्यार के आशियाने को देख भी नहीं सके। ये सच्चाई उन्हें पूरी तरह से तोड़ गई थी। सर पर गहरा जख्म था जो अभी तक ठीक से भरे भी नहीं थे। अब वो सर पर इतना जोर दे रहे थे कि उनका सर दर्द से फटने लगा। उन्होंने अपने सर को पकड़ लिया, जिससे सुयश जी अर्पिता जी घबरा गए। सुभाष जी के सर की नसें तन गई थीं, जैसे किसी भी पल फट जाएंगे, और जब उनसे इतना दबाव और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने होश गंवा बैठे। उन्हें बेहोश होते देखकर शान, जो तब से एक तरफ खामोश खड़ा सब सुन रहा था, वो डर के उन्हें पुकारते हुए उनके पास आ गया। सुभाष जी की आंखों से आंसू की बूंदें बह चली। वो अतीत की यादों में खो गए थे और उस दर्द को एक बार फिर जी चुके थे जो उस वक्त उन्होंने सहा था। उनके पास बैठी आरवी की आंखों में भी नमी तैर गई थी। चेहरे पर अजीब से भाव और लबों पर खामोशी, पर दिमाग में तूफान मचा हुआ था, क्योंकि दो लोगों से उसने दो अलग कहानी सुनी थी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सुभाष जी भावुक हो गए थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, फिर ठंडी आह भरते हुए आगे कहना शुरू किया। उस दौरान हम तनाव में थे और शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर थे। यही वजह थी कि हम वो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने होश गंवा दिए। जब हमें होश आया तो काफी वक्त बीत चुका था। हमें भाई साहब की बातों का गहरा सदमा लगा था। दिमाग ने सुन पड़ गया था। जीने की चाह खत्म हो गई थी हमारी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा अपना दोस्त और हमारी पत्नी, जिन्हें हम अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, वो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेंगे। उस वीडियो को देखने और भाई साहब की बातों को सुनने के बाद भी हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि अमर और सावित्री जी इतना घटिया काम कर सकते हैं, पर उनका हमारे पास ना होना हमारे विश्वास को पल पल तोड़ता जा रहा था और उसके साथ टूट रहे थे हम।
न चाहते हुए भी हमें उन बातों पर विश्वास करना पड़ा जो जिंदगी की चाह ना होने के बावजूद हम जिंदा रहे तो शान के लिए, क्योंकि उनके सर से माँ का साया पहले ही छिन गया था। हम नहीं चाहते थे कि उनके सर से पिता का हाथ भी उठ जाए और वो उन्हें अनाथ बनकर अपनी जिंदगी बितानी पड़े। टू बी कंटिन्यूड।